ओम शांति। इस नुमा शाम की वेला में आज हम सभी के मध्य आदरणीय रमा दीदी जी उपस्थित हैं। हम आपका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपने बाल्यकाल से ही ज्ञान और योग को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को इस दिशा में अग्रसर किया। पिछले लगभग 40 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय कानपुर उत्तर प्रदेश में आप रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ आपने विभिन्न स्थानों पर जाकर के भी, अनेक सेवा केंद्रों पर रहकर भी अनेक आत्माओं के जीवन को इस राजयोग की दिशा में अग्रसर किया है। भोपाल, लखनऊ, अन्य स्थानों पर भी आपने रह करके ज्ञान और योग के इस प्रचार प्रसार में, परमात्मा के इस कार्य में आपने स्वयं को समर्पित किया, आगे बढ़ाया और आज हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। कुछ अपने अनुभवों से हमारी झोली भरेंगे, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करेंगे। उन पुष्पों को हम अपने साथ संजो करके रखें, क्योंकि ये अनुभव वो मोती है जो हमारे जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं और आदरणीय दीदी जी से हम सभी सुनेंगे।
ओम शांति। फिर एक बार बोलिए सभी, ओम शांति। शांत हो गए सभी? शांत हैं सभी का चित्त और मन? शांत है क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए अंदर की शांति बहुत जरूरी है। अभी हम सभी अपनी बुद्धि रूपी झोली बाबा के घर आकर के सब भरने के लिए आई है। आई है ना भरने के लिए? कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। उस झोली में कहीं छेद तो नहीं है? पहले चेक करें। अगर छेद होगा ना तो सब कुछ क्या होगा, निकल जाएगा। एक सेठ जी थे, बहुत दुखी और अशांत रहा करते थे। तो एक बार वो गुरु जी के पास पहुंचे और कहा, गुरु जी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता है और मैं बहुत दुखी अशांत रहता हूं। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है, कल आप एक पात्र लेकर आइएगा, तो मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। तो दूसरे दिन सेठ जी गुरु जी के पास पहुंचे और गुरु जी ने कहा कि आप पात्र करो। तो पात्र में बहुत छिद्र थे, कहने का भाव छेद थे। तो गुरु जी ने कहा कि इसमें अगर मैं कुछ डालूंगा ना तो सब निकल जाएगा, आप कोई ऐसा पॉट लेके बर्तन आओ जिसमें ये दूध नहीं निकले बाहर। तो कहा, अभी तो मेरे पास यही बर्तन है। तो गुरुओं की हर बात में क्या होती, सीख होती, शिक्षा होती है। तो कहा, ठीक इसी प्रकार से आपके मन में बहुत सारे छिद्र है, विकारों के, व्यसनों के, बुराइयों के, विकृतियों के, इस कारण आपका मन शांत नहीं रहता है। अगर ये छिद्र हट जाए तो आपका जीवन कैसा रह जाएगा, कैसा होगा? बहुत शांत, सुखमय। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी प्यारे बाबा के घर पहुंचे हैं और यहां पर हम पुण्य की पूंजी जमा करने के लिए आए हैं। सबका यहां पर पर्सनल अपनी कमाई है, कमाई बिजनेसमैन जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। जो व्यापारी होते हैं ना, वो बहुत भली भांति कमाई जानते हैं। अगर उनको एक दिन के लिए भी कोई कहे कि हमारे पास आ जाओ, या कोई कार्य व्यवहार में कहेंगे नहीं हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारा बिजनेस ही ऐसा है, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, अनेक प्रकार की बातें करके वो कोई भी व्यवहारिक कार्य में अपना समय नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, कमाई है। और हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, किससे व्यापार करने के लिए हम आए हैं और कर रहे हैं, बहुत बड़ा सौदागर है ना बाबा, उससे हम बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं। तो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितनी बड़ी कमाई है, वो तो एक जन्म के लिए कमाते हैं, और हम बाबा के बच्चे 21 जन्मों की कमाई तो हमारी सुनिश्चित है ही, लेकिन डिपेंड हमारे पूरे 84 जन्म होते हैं। हम इतने जन्मों के लिए कमाई कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े व्यापारी हैं। इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, कितनी कमाई करनी है। एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। एक बॉम्बे में वकील है बहुत बड़ा, उसका एक सेकंड भी करोड़ों की कमाई करते हैं, और हमारी सेकंड में कितनी कमाई होती है मालूम है आप सभी को, पद्मों की कमाई होती है। तो अगर हम एक सेकंड भी संगम का गंवाते हैं, कैसे गंवा देते हैं हमें पता भी नहीं पड़ता है, व्यर्थ कितना समय करते हैं, कितना हम बच्चे निगेटिव सोचते हैं, और कितना यहां मधुबन वरदान भूमि पर आकर हम आपस में जब मिलते हैं तो हम अपनी सौंदर्य की बातें करते हैं या कुछ और करते हैं। बहुत समय के बाद मिलते हैं, हमें हमारे सखी या हमारे भाई बहुत दिनों बाद जब मिलते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि हम आपस में अपनी सौ उन्नति की बातें करते हैं, अपने तीव्र पुरुषार्थ की बातें करते हैं, या हम यहां भी आकर तेरी मेरी करते हैं। क्योंकि हमें पुण्य की पूंजी जमा करके साथ ले जानी है, इस पर हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि ये हमको विशेष समय बाबा ने दिया है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं। हमारे जैसा भाग्य संसार में भी किसी का नहीं है, ऐसा स्वमान रहता है माताएं, ऐसा स्वमान रहता है। हम साधारण नहीं हैं, भले ही साधारण कर्म है, साधारण हमारा जो भी है, लेकिन हर समय हमारे अंदर विशेष हम अपने आप को रोज स्वमान की सीट पर बैठा देते हैं। जब ऑफिसर सीट पर बैठ जाता है ना, तो उसको किसका कॉन्शियस होता है? वो कहेगा हम साधारण हैं। उस समय वो क्या होता है? ऑफिसर होता है। ऐसे ही हम बच्चे जितना अमृत बिले बाबा की याद में रहकर और अपने को रोज स्वमान की सीट पर क्या कर देते हैं, स्थित कर देते हैं, बिठा देते हैं, हे आत्मा तू इस सीट पर क्या हो जाए, बैठ जाए। बिठाते हैं या नहीं बिठाते हैं, क्या करते हैं भाई? या इतना टू मच थके हुए होते हैं कि अमृत वेले उठने का होश ही नहीं होता है। अगर अभी भी आकर के हमको ये पक्का दृढ़ निश्चय करके जाना है, क्योंकि जीवन का जो हमने लक्ष्य सुनिश्चित किया है उस पर रोज रोज दृढ़ता का क्या देते जाएं, जल देते जाएं, कि मेरा लक्ष्य कितना ऊंचा है। अगर हम उस लक्ष्य की तरफ दृढ़ नहीं है और वो हम स्वमान में नहीं है, तो लक्ष्य क्या हो जाएगा? जिस लक्ष्य के लिए लेकर हम आगे बढ़े हैं, वो लक्ष्य क्या हो जाएगा, रहेगा? उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए हमें रोज रोज क्या करना पड़ेगा, हम उस लक्ष्य को पाने के लिए हम रोज रोज स्वमान की सीट पर अपने को स्थित कर दे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो जब महान आत्मा हूँ तो हमारा हर कर्म कैसा होगा, कैसा होगा? महान होगा, विशेष होगा। भले दिखने में हम साधारण हैं, लेकिन जब हम विशेषता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो सभी को दिखने में हम साधारण नजर नहीं आते हैं, हम सब के लिए दर्पण बन जाते हैं। क्योंकि हमारा चलन और हमारा चेहरा ये बहुत बड़ी सेवा करता है। ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन अगर हमारी चलन व्यवहारिक जगत में, उस कर्म भूमि में हम रहते हैं और अगर किसी को दिखाई नहीं देती है तो लोग हमारा ज्ञान सुनेंगे, सुनना चाहेंगे, फिर हम कितना भी किसको सुनाते हैं वो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना है। कितना श्रेष्ठ बाबा कितना श्रेष्ठ ज्ञान, और उस ज्ञान को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हो पाते, क्यों? कारण, कारण क्या होता है? ऐसे चलाने देना है, कोई भी चीज को चलाना नहीं है कि लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी चलन, हमारा चरित्र ऐसा दिव्य दर्पण बन जाए जो लोगों को दिखाई दे, हम जो भी एक्ट करते हैं या करें तो सब प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना प्रैक्टिकल में। तो जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको हमें करना क्या है? सुनना अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन समाना, ज्ञान को समाना, समाना रेयर किसी को अच्छा लगता है। अगर हम उसको आत्मसात कर लेते हैं या समा लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम बहुत वैल्यूबल आत्मा हैं, वैल्यू क्वालिटी से बढ़ती है, गुण और विशेषताओं से वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। उस पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक मूर्तिकार था, उसने बाजार में 3 मूर्तियां रखी बेचने के लिए, और मूर्तियां सेम थी, कुछ भी उसमें फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसने तीनों मूर्तियों की जो कीमत थी तो अलग अलग लगाई हुई थी। जो पहली मूर्ति थी उसकी कीमत 100 रुपए थी, और जो दूसरी मूर्ति थी उसकी 500 कीमत थी, और जो तीसरी थी उसकी 1000 की वैल्यू थी। जो भी आ रहा था देख रहा था कि मूर्तियां तीनों सेम सी दिखती है, पर कीमत में फर्क क्यों? तो उससे सभी ने पूछा मूर्तिकार से कि इतना पैसे का फर्क क्यों? तो बताया कि जो ये मूर्ति है जिसकी कीमत 100 रुपए है, ये क्या है कि इसका जो तार है वो मुख से कान में जाता है, और कान से दूसरे कान में चला जाता है, और दूसरी जो मूर्ति है जिसकी कीमत 500 है वो कान से जो तार गया है वो मुख तक जाता है, और तीसरी जो मूर्ति है उसका जो तार है वो मुख से पेट तक जाता है। क्या भाई इसमें क्या कि वो पेट तक जाता, वो मुख तक जाता, वो कान तक जाता? क्या ये जो पहली मूर्ति है वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से क्या करती है? निकाल देती है, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपए है। और जो दूसरी मूर्ति है उसका तार कान से मुख तक गया है, वो क्या करती है? मुख से सुनाती है, पर धारण नहीं करते हैं। और तीसरी जो मूर्ति है जिसकी कीमत इतनी है, वो मुख से सुनाती भी है, कान से सुनती भी है और पेट तक जाता है, उसको क्या करती है, धारण करती है। है मूर्ति सेम एक जैसी ही, लेकिन कीमत में क्या है, फर्क है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे भी हैं, सभी एक जैसे ही, लेकिन हमारे ही धारण करने या ना धारण करने के कारण हमारी वैल्यू या तो बहुत ऊंची हो जाती या वैल्यू कम हो जाती है। उस वैल्यू को कम या ऊपर करने के निमित्त कौन बनता है, कौन बनता है, स्वयं या कोई और? बहुत गहरी बात है। अगर इतनी डीप में हम जाते हैं, क्योंकि सागर के कंठे पर आए हैं और जो बहुत हीरे पन्ने मोती जो मिलते हैं ना, वो गहराई पे जाने पे मिलते हैं। सागर में भी बहुत हीरे पन्ने मोती की खेती होती है। किसने देखी है, देखा आप लोगों ने? जिसने देखा वो बताए, नहीं देखा है। जब मैं अंडमान गई तो वहां मुझे बहुत गहराई में ले जाया गया, और जितने भी असली हीरे मोती होते हैं ना, हीरा छोड़ो मोती पन्ना मणिक मुगा, ये सारे सागर के नीचे में इनकी खेती होती है। तो बहुत गहराई में है। ऐसे ही जितना जितना हम बाबा के बच्चे इस ज्ञान सागर की गहराई में जाते हैं, तले में चले जाओ, या हम समय को सफल करने के लिए आई है, जितना हम तले में जाते हैं उतना हमें बहुत सुंदर सुंदर श्रेष्ठ विचारों के, श्रेष्ठ संकल्पों के मोती पन्ने मिल जाते हैं। तो क्या हमें मिल रही है, मिल रहे हैं, या अभी लेने हैं, या ले लिए हैं, क्या किया है? मिले हैं, सबको मिले हैं, सबने लिए हैं। अगर मिले हैं तो बहुत खुशी की बात है, सब ताड़ी बजा लो अपने ऊपर कि इतने सारे हमने गेन कर लिए, ले लिए, प्राप्त कर लिए है। मुझ जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं है संसार में। क्या ऐसा अपने को हम समझ रही है? सुबह से शाम तक की अपना विशेष हम टाइम टेबल बना रही है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं ना, वो सुबह से शाम तक की दिनचर्या सेट करते हैं। तो क्या हमारे सारे दिन की दिनचर्या की सेटिंग है कि है, या ऐसे ही हम समय को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं? क्योंकि अभी कई बच्चे यूपी के कौन कौन बैठे हैं, यूपी के भाई बहन काफी बैठे हैं ना। हम सेवाधारी में अगर आए हैं, ये छोटा मोटा भाग्य नहीं है। कुछ दिन के लिए बाबा ने विशेष हमको भाग्य बनाने का गोल्डन चांस दे दिया है। सबको खुली छुट्टी है, तो क्या हम उतना भाग बना पा रहे हैं? भाग्य को अपने हाथों में नहीं देखना है, भाग्य की लकीर मेरे हाथों में है। जितना हम चाहें उतना हम अपनी लकीर खींच रहे हैं या लकीर पकड़ के ही खड़े हैं। एक एक आत्मा स्वयं जिम्मेवार है कि जो बाबा ने कलम दिया हुआ है उसकी हम गहरी दिखाते हैं ना। ज्योतिषी जी कहते हैं बहुत गहरी लकीर है भाग्य की, उतनी हम गहरी और स्पष्ट एकदम क्लियर अपनी लकीर खींच पा रहे हैं, खींच रहे हैं। सारा दिन क्या करते हैं और यहां भी आकर हम सारा दिन क्या करते हैं। हमें जो 8 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का जो भी हमें समय मिला है बहुत वैल्यूबल है। समय जा करके फिर वापस नहीं आता है, ये बहुत बड़ा खजाना है। और जो भी बच्चा समय को सफल कर लेता है तो समय उसको साथ देता है। कहेंगे मेरा समय बहुत खराब था, बहुत बुरा समय था, लेकिन समय ने साथ दे दिया। कोई कहेगा मेरा समय बहुत खराब था लेकिन समय ने भी साथ नहीं दिया। क्यों? एक को साथ दे दिया समय ने और एक को साथ नहीं दिया, क्यों? क्या कारण है? कारण क्या है? एकदम सीधा कारण दिखता है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ आया या अपने लौकिक स्थान पर है वो हर व्यक्त समय को सफल करने में लगा है। चाहे वो मनसा सेवा कर रहा है, चाहे बाबा की याद कर रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, चाहे बाबा की याद में भोजन कर रहा है, एक्स वाई जेड जो भी कुछ कर रहा है वो समय को क्या कर रहा है? सफल कर रहा है। और एक है समय को क्या कर रहा है उसको खुद को ही नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कर रहा है, ऐसे ही समय को गंवा रहा है। तो समय भी देख रहा है और वो देख करके क्या करता है, जब ऐसा समय आता है तो समय हमें क्या दे देता है? साथ दे देता है और हम सक्सेस हो जाते हैं। अगर हमने समय को ऐसे ही गंवा दिया तो हम समय पर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं इतनी झोली भर लें कि छलकना शुरू हो जाए, वो चाहे वाइब्रेशन के रूप में, चाहे हमारी एक लाइट और माइट के ऑरा के रूप में, चाहे हमारी चलन के रूप में, इतना ज्यादा हमारा भर जाए कि हम दाता के बच्चे देने वाले बन जाए। सब कौन बैठे? भिखारी के बच्चे नहीं बैठे हैं ना, सब दाता के बच्चे बैठे हैं ना। कोई है भिखारी का बच्चा? नहीं ना, सब दाता के बच्चे बैठे हैं। हम देवता बनने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं। बाबा ने हमें भरपूर कर दिया है, हम खाली है ही नहीं। है कोई खाली जिसको बाप ने दिया ही नहीं है या हमने बाप से लिया ही नहीं है? है कोई बच्चा ऐसा यहाँ पे? नहीं है ना। सबको बाबा ने भरपूर किया हुआ है हर तरह से। जो भरपूर है वो संतुष्ट है और जो संतुष्ट है वो सदा खुश है। खुश? भी खुश हैं या खुशी चाहिए? क्या है? सब खुश है ना? कितना अच्छा लग रहा है, बाबा को भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। मेरे बच्चे खुश हैं। लौकिक में माँ बाप होते हैं ना, कहेंगे ये मेरा बच्चा बहुत खुश रहता है, पर इसको सब कुछ करता हूँ पर ये खुश संतुष्ट नहीं रहता है। पर हम बाबा के बच्चे सब खुश हैं, सब संतुष्ट है, सब भरपूर है। बाबा ने सबको एक जैसा दिया हुआ है, किसी को ज्यादा कम नहीं दिया है। लेकिन हम स्वयं को चेक नहीं करते हैं। अगर चेक करें तो चेंज करें ना। अपने को हम यह मिठू ही समझते रह जाते हैं, नहीं मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही राइट हूं, अगला ठीक नहीं है। ये अंदर में कभी कभी हमारे अंदर ये कंप्लेन चलती रहती है। जब ये अंदर में चलता है ना, तो हम कंप्लीट, जहां कंप्लेन है वहां कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो सारी कंप्लेन की फाइल क्या करो, क्या करें? सारी कंप्लेन की फाइल बंद कर देना, बंद कर दो संगम युग पर। फिर जब कलयुग आएगा तो खुल जाएगी वो फाइल। अभी क्या करें? फाइल बंद करें ना। कोई से गिला शिकवा नहीं। सब जो जो भी ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसा कर रही है? सब अच्छे हैं, सब अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। जो भी पार्ट बजा रहे हैं ड्रामा अनुसार उनका वही पार्ट सुनिश्चित है और ये यही पार्ट बजाएंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहेंगे बहुत प्रॉब्लम है, घर में रहता हूं तो बहुत प्रॉब्लम है, परिवार के सदस्यों से बड़ी प्रॉब्लम है, सास से, बहू से, भाई भाई से, किससे किससे। जब ड्रामा में उस आत्मा का यही पार्ट है, यही रोल है, वो यही प्ले करेगा। हमें तो ज्ञान मिला है ना, समझ मिली है ना। नॉलेज इज द लाइट और नॉलेज इज द माइट। पावर भी मिल गई, रोशनी भी मिल गई, तो सारी कंप्लेन की फाइल बंद हो गई। तो अभी हम क्या कहेंगे सबके लिए? सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जो भी है सभी बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, और ये सब बहुत अच्छे हैं। अभी घर में जाके सब ऐसा चेंज करेंगे अपने को? अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छा, दी बेस्ट। अगर नहीं किया हुआ है तो घर जाकर के चेंज करेंगे अपने को? भाई लोग करेंगे? सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देंगे ना, ये पॉजिटिविटी, तो सब क्या हो जाएंगे? हम लोगों ने बुरा 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 बोला ना उनके लिए, सब बुरे हैं, सब अच्छे नहीं हैं, सब दुख देते हैं, सब तंग करते, सब परेशान करते हैं। जब हमने स्टैंप ही लगा दिया ना, तो क्या हुआ? अच्छे हुए या बुरे? बुरे हो गए ना। जब हम अभी से ये हमने अंदर दृढ़ संकल्प करके जाएं कि सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, हो रहा है, आप देख लेना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बेटी है, जो भी एक सोचेड है, सब क्या हो जाएंगे? सब अच्छे हो जाएंगे। और मैं भी अच्छा हूं, अपने लिए भी हमें 100% पॉजिटिव रहना है, अपने लिए भी नहीं। कई अपने को भी कोसते हैं अभी भी बाबा के बनकर। माताएं आएंगी, कहेंगी मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे घर में कोई सुख नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता है। हम कहेंगे माता जी फिर मुरली क्या सुनते हो, यही मुरली सुनते हो? अभी अपने ही लिए ही हम भाग्यशाली नहीं कह पा रहे, दूसरों का भाग्य कैसे बनाएंगे? बाबा ने ये कलम तो मेरे को दे दी ना। सबका भाग्य बनाने के निमित्त किसको बनाया बाबा ने? किसको बनाया? हमको बनाया ना, निमित्त हमें बनाया ना। और अभी मेरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं तो भाग्यशाली नहीं, क्या करूं क्या बताऊं बहन जी। तो जब मेरा ही भाग्य भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्या मैं आत्मा विश्व की आत्माओं का भाग्य बना सकती हूँ या बना सकते हैं? बताइए, नहीं बना सकते हैं ना। इसलिए जहां कहीं भी कमी है वो भरना किसको पड़ेगा? किसको भरना पड़ेगा? स्वयं को। एक एक पॉइंट बाबा की बहुत गहरी होती है और उस पॉइंट को सुनते ही मैं आत्मा एकदम पॉइंट स्वरूप बन जाऊं। पॉइंट, मैं आत्मा पॉइंट अब बनते ही जाऊं तो क्या होगा? जो हमारे अंदर की कमी है, कमजोरी है, जो भी थोड़ी बहुत बुराई रह गई है, उन सब कमियों क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। तो मिटाने आई है ना, कंप्लीट होने आई है ना, कंप्लेन की फाइल बंद करने आई है ना। ये हमारा सबका वर्क है, ब्राह्मण बच्चों का क्या है, ये सब वर्क है। वर्क इस वर्क से, तो अपने कार्य में हमें कुशल होना है। हमारे पास व्यर्थ के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि इतना हमने समर्थ करना है, इतना श्रेष्ठ कार्य के जिम्मेवार बाबा ने मुझे बनाया है, उसके लिए व्यर्थ के लिए समय होगा? बताइए, होगा समय? अभी व्यर्थ कहाँ से आया? व्यर्थ को भी छुट्टी दे दो, विदाई दे दो। देंगे? देंगे? गर्दन हिला दो भाई, तो पता तो लगे ना दी। व्यर्थ को छुट्टी, याद रखेंगे ना आज की तारीख, आज का दिन, और आज इसी स्थान पर बैठ करके हम बच्चों ने व्यर्थ की विदाई दे दी तो बहुत लाइट हो जाएंगे। जैसी आत्मा स्टार्टिंग आई थी और जैसा उसका अनादि स्वरूप था आत्मा का, लाइट थी ना, माइट थी ना, आई भी थी तो स्टार्टिंग लाइट थी। अभी कैसी है? वेटेड। अभी कैसा है? मन बड़ा भारी है। क्या कहते हैं? बड़ा मन भारी है। क्यों भारी है? क्यों भारी है? नींद नहीं आती है। यहाँ पे आती नींद की नहीं आती सबको? बाबा के बच्चों को नींद आती है? आती है सबको? आती नींद? कोई गोली खा के तो नहीं सोते? तो इसका मतलब मन हल्का है ना। मन को बहुत हल्का रखना है, मन में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं डालनी है, क्योंकि आत्मा ऐसे कंप्यूटर है, उसमें ढेर सारी फाइल डाल देंगे ना तो वो तो क्या हो जाएगा? बहुत वेटेड हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज हमें मन में डालनी ही नहीं है, व्यर्थ की, निगेटिव की, जो वो पॉजिटिव हो, श्रेष्ठ हो। तो मन कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। जब हल्के हो जाएंगे तो लाइट जो होता है ना, हल्का होता है, वो खुशी में क्या करता है? वो नाचता है। अगर खुशी में नाच रहे तो दी बेस्ट, अगर अभी भी भारी है, खुशी है नहीं, कईयों में नहीं होती है ना खुशी, दुनिया वालों के लिए बात नहीं चल रही है, कहां किसके लिए चल रही है, बाबा के बच्चों के लिए। कहेंगे कभी रहती कभी नहीं रहती, ऐसा क्या, खुशी कभी रहती कभी नहीं रहती, तो कभी क्या रहता है, खुशी कैसी रहनी चाहिए, सदा। बाबा सदा शब्द जोड़ देते हैं। ये चीजें हमारे अंदर सदा क्यों नहीं रहती है, कारण क्या है, कारण को जब समझेंगे तभी निवारण हम कर सकेंगे। जब तक कारण को नहीं समझेंगे तो उसका निवारण भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर इन विकारों का बहुत बड़ा बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके भी बहुत सारे बंधन हैं, अंश हैं। इन बंधनों में जब तक आत्मा बंधी रहेगी तब तक उसको चैन, खुशी, शांति, सुख नहीं मिल सकता है। ये पक्का गांठ बांध लो। और जिस दिन आत्मा इन विकारों के बंधन से अपने को मुक्त कर लेगी तभी वो चीजें उनको क्या होगी, कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमको खुशी, हमको सुख, हमको शांति। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप स्वतः ही हर आत्मा को प्राप्त होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत बंधन में जकड़े हैं, यही क्या करो, घर जाके नहीं, काट देना वो जो डोर के बंधन में बंधी आत्मा है ना, उसको यही बाबा की याद में बाबा की कमरे से जा करके अपने को मुक्त करके जाना। क्योंकि हमें लेना ही नहीं है, हमें बाबा से लेकर के अन्य आत्माओं को क्या करना है, देना भी। हम औरों के लिए जी रहे हैं, हम जानवर हैं क्या जो स्वयं के लिए जी रहे हैं? कौन कौन स्वयं के लिए जीते हैं यहाँ पर, नहीं सब औरों के लिए भी जी रहे हैं ना, सारे विश्व के लिए जी रहे हैं। विश्व की निगाह हम बाबा के बच्चों पर है। जब वो हमें हर हाल में संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, वो मेरे अंदर की कमी नहीं देखना चाहते हैं। अगर होती भी है तो झट टोक देते, आप पर शोभा नहीं देते, बोल देते हैं ना। अगर ऑफिस में भी कुछ ऐसा हम करते हैं या व्यापार में भी थोड़ा तीखा बोल देते हैं तो क्या कहते हैं, भाई साहब आप पर अच्छा नहीं लगता, आप तो ज्ञान में जाते हैं ना, आप पर ही शोभा नहीं देता है, बोल देते हैं ना। माताएं भी अगर घर गृह में रह करके स्वयं ज्ञानवान है, अगर उनके परिवार के सदस्य ज्ञान में नहीं है, अगर वो भी कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, उनको सहयोग नहीं देते हैं, उनको प्यार नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो कहने में आता है ये देखा बहु ज्ञान में चलती, सास ज्ञान में चलती, पर इसका व्यवहार बहुत खराब है। ये किसकी इंसल्ट हो रही है, ये मेरी इंसल्ट नहीं है, बनाने वाले की है। वो मुझे कंप्लीट बना रहा है और कितनी मेहनत कर रहा है बाबा, कर रहा है ना मेहनत, कोई मेहनत में कमी छोड़ रहा है। हम लोग भले ही कुछ करें लेकिन बाबा कितनी मेहनत कर रहा है हम बच्चों के लिए, ये एहसास हम सभी को है। तो क्या हम अपने लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, ऐसे अपने पर थॉट क्रिएट करने चाहिए। बाबा हमारी लाइफ को बना रहा है, एक जन्म की नहीं, एक एक का इंडिविजुअल ध्यान रख रहा है, एक एक को वो देखता है कि मेरा बच्चा क्या करता है, क्या करना चाहिए, वो गढ़ रहा है। कुम्हार जैसे गढ़ता है ना, ऐसे ही वो बन करके वो मुझे गढ़ रहा है, वो मुझे बना रहा है। तो क्या अपने ऊपर इतना अटेंशन है, इतना हम बाबा के बच्चे अपने को बनाने के हम जिम्मेवार हैं, या हमारा ध्यान और कहीं तरफ भटक रहा है? कितना समय भटकाया, तेरी मेरी की, अभी ये सब करना क्या करे, बंद करो। अब अपने अंदर वो देवताई संस्कार, वो ब्राह्मणी संस्कार इमर्ज हो जाने चाहिए, और ये संस्कार मर्ज हो जाने चाहिए। तो क्या मेरे अंदर वो संस्कार इमर्ज हो गए हैं? क्या लोग मुझे विशेषता की नजर से देख रहे हैं? क्या लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं? स्वयं को क्या करना पड़ेगा, अपने ही ऊपर क्वेश्चन पुट अप करना होगा। और अगर कुछ कहीं कमी है, क्योंकि अभी हम सब संपूर्ण तो बने नहीं हैं, बनने का क्या कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, पर पुरुषार्थ हम बार बार उसी चीज को लेकर करते हैं ना, थक जाते हैं। जैसे मम्मा का सुनते थे ना, कि मम्मा एक ही बार उस चीज का पुरुषार्थ करती थी, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती थी, उसका वो सब्जेक्ट वो टॉपिक क्लोज कंप्लीट खत्म। और हम अगर उसी चीज के लिए एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, कितनी बार उसी टॉपिक के लिए, उसी कमी को लेकर के हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, फिर कहेंगे हम तो पुरुषार्थी है ना। इसीलिए उसी चीज की कमी को मिटाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ जाती है। और जब बहुत टू मच मेहनत करते हैं तो क्या होता है, मेहनत करने वाला क्या होता है, थक जाता है। कहते भैया थक गए, जरा रुक जाए ना, थोड़ा बैठ जाए ना, थोड़ा ठहर जाए ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब थक जाते हैं ज्ञान मार्ग में आकर, तो फिर क्या होगा, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे ज्ञान में चलने में बड़ी मेहनत है, बड़ा पुरुषार्थ है, इसे तो भक्ति ठीक है। कईयों के मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन अंदर में पुट अप होना शुरू हो जाते हैं। एक बार अगर कोई हमसे भूल हो जाती है तो क्या करना है, हमें दृढ़ संकल्प से, तीव्र पुरुषार्थ से हमें उसको फिनिश कर देना है। कोई भी चीज है, युद्ध किया, फाइट करो और उस चीज को क्या करो, फिनिश करो। अब उसके लिए हमें बार बार होमवर्क करने की जरूरत ना पड़े। जहां हमने ये सम्मान लिया कि मैं कैसी आत्मा हूं, मैं पावरफुल सोल हूं, किसका बच्चा हूं, गीदड़ का बच्चा, किसका बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूं। ये डाउट है, किसी को डाउट है, भाइयों को नहीं ना, किसकी संतान हूँ? उसकी संतान मैं कमजोर हो ही नहीं सकती हूँ। ये भी पावरफुल थॉट। कितना भी माया हमको कमजोर करने की कोशिश करे, लेकिन मैं तो हनुमान हूँ, महावीर हूँ। क्या हनुमान इतना महावीर था माया ने उसको छोड़ने की कोशिश की? छोड़ा, लेकिन उसमें वो क्वालिटी थी कि वो माया को हरा देता था। चैलेंज आए, माया आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? हरा दूंगा। आप लोग, हम सब क्या कर सकते, क्या करें? चैलेंज माया, तुम किसी भी रूप में आओ, मुझे इसकी नॉलेज है और मैं माया जीत हूँ। कल्प कल्प की मैं वो विजयी रतन आत्मा हूँ। एक बार मैंने विजय नहीं पाई है, हर कल्प में। सब कौन बैठे हैं भाई लोग? सब महावीर कौन बैठे हैं? हनुमान महावीर बैठे हैं ना? जो कमजोर है वो हाथ उठाओ, बाबा यहाँ सबको महावीर बना देगा। बाबा के घर आए हैं ना, जो भोजन भी करेंगे ना बाबा के घर का, वो सब क्या बन जाएंगे? अपने ऑटोमेटिक महावीर बन जाएंगे, नहीं होंगे तो बन जाएंगे, बाबा बना देगा। आप लोग का बच्चा पैदा हो जाता है, अगर जरा भी कमजोर होता है डॉक्टर को दिखाते हैं, कितनी सारी टॉनिक लिखवा देते हैं और बच्चे को क्या करते हैं? होप टॉनिक पिलाते। मेरा बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। तो हम किसके बच्चे हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। वो सुपर सर्जन है। उस सर्जन के बच्चे हम कमजोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम हार खाने वाले नहीं, हार खिलाने वाले हैं। हार पहनाने वाले नहीं, हार पहनने वाले हैं। क्या है बताओ, क्या है? हार हम पहनाएं किसी को या हार हमारे को कोई पहनाए? बहने क्या करेंगी? अभी तक मंदिरों में बड़े हार पहनाए ना, मूर्तियों के आगे। अभी बाबा ने क्या बना दिया? अब हार पहनाओ नहीं, हार पहनो। तो जो हम क्या होने, जीत प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, तो जिन्होंने जीत पाई है उन्हीं को भक्त आत्माएं क्या कर रही है? हार पहना रही है। तो हम ऐसे कोटों में कोई कौन से आत्माएं हैं? महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं, सब एकाग्र है, सब अर्जुन बन के बैठे हैं। अर्जुन का लक्ष्य क्या था? क्या था लक्ष्य? सबको पता है ना लक्ष्य? इस समय मेरा भी लक्ष्य क्या है? हम यहाँ सौगात लेने आए हैं या हम अपने को पावरफुल बनाने आए हैं? क्या करने आए हैं? झोली भरने आए हैं, पुण्य की पूंजी जमा करने आए हैं और बाप के साथ का अनुभव कर रहे हैं बैठ करके। बाबा मेरे साथ बैठा हुआ है, अकेला नहीं हूँ। साथी के साथ का हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग, गुड फीलिंग में बैठे हैं, बैठे हैं, गुड फीलिंग, अच्छा लग रहा है। बाबा मेरे साथ है। जो बाबा के बच्चों को प्राप्त है, मैं अपने अनुभव से सुनाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही ज्ञान में है। जीवन ही बाबा के लिए है और बाबा की सेवाओं के लिए है। तो जो अनुभव किया है कि आज मेरे जैसा सुखी, खुश, गुणवान ज्ञानवान सब धन से धनी कोई भी नहीं होगा। है कोई हम जैसा? सब प्रकार से ज्ञान धन से भी धनी है। सारे धन हमारे पास है। आप देखो तो सही, अपने अंदर देखो तो सही, कितना कुछ खजाना भरा पड़ा है। अगर ऐसा आत्मा को अनुभव होता है तो बेहद खुशी पाना था, सो अभी कुछ रहा ही नहीं शेष, बाकी सब कुछ मिल गया। अब तो हमारा चलन और चेहरा ही सब सेवा करे, सब मोबाइल बन जाए, चलते फिरते हमारे चलते फिरते क्या होती रहे, सेवा होती रहे। कोई भी बच्चा ये सेवा कर भी रहा है और कर सकता है, साधारण बच्चा भी। मैं तो देखती हूँ साधारण जो बाबा के बच्चे हैं उनकी धारणा तू मच अच्छी दिखती है, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत अच्छी सेवा करते, बड़े बड़े ऑफिसर्स की सेवा उनके चलन और चेहरे से होती है। एक बार आईएएस के पास मैं गई, उन्हीं के ऑफिस में एक ज्ञान का बच्चा क्लर्क था, उनका बहन जी मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब आप सोच लीजिए, बोला कि जब मैं ये ऑफिस में आता है और इसका हर कार्य व्यवहार देखता हूँ, मैं पोस्ट भले आईएएस की है लेकिन मैं फॉलो इस बच्चे का करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इतने बड़े बाप के बच्चे हैं, कभी मन में ये फीलिंग नहीं आए कि मैं साधारण हूँ। आप हम सब सदा इस सम्मान की सीट पर बैठे रहें कि मैं विशेष से विशेष विशेष बच्चा हूँ बाबा का, और मैं विशेष सेवा कर सकता हूँ। बस अपने को बदल दो, चेक चेंज, चेक चेंज। जहाँ कहीं कमी दिखे ना, कोई मुझे टोके, मैं सबको शिक्षा देने वाला हूँ ना, शिक्षक हूँ, तो शिक्षक को कोई टोके, ठीक बात नहीं ना? अगर कहीं मुझे अपनी थोड़ी भी कहीं कुछ कमी कमजोरी दिख रही है, चेक किया और इमीडिएट हम क्या करें, चेंज कर लें। यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है और यही हमें उड़ती कला की ओर क्या ले है, हमें ले जाएगा। तो अभी समय ही कितना थोड़ा बचा है, हर कुछ बाबा ने अचानक बताया है और हम देख भी रहे हैं सब कुछ अचानक हो रहा है, कुछ बता के नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें माइंड से, सदा तैयार रहें, सदा हमारा स्टॉक क्या रहे, जमा रहे, बैंक बैलेंस क्या रहे, जमा रहे। तो वो जो बैंक बैलेंस जमा रहेगा वही मेरे साथ क्या होगा, वही जाएगा ना। तो मुझे वो ले करके क्या करना है, जाना है। सबको समझ में आ रहा है? समय बहुत थोड़ा है, बाबा के इशारे मिलते जाते हैं, क्लासेस भी हम दादियों की या वरिष्ठ भाइयों की सुनते हैं, देखते देखते क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। हमें समय से पहले क्या करना है, अपने को तैयार करना है, तो हमें ही नंबर मिल जाएगा। अगर समय ने मुझे तैयार किया तो किसको नंबर मिलेगा, किसको नंबर मिल जाएगा? हमें नहीं मिलेगा, समय को नंबर मिलेगा। इसलिए समय से पहले स्वयं को क्या करना है, अपने को तैयार करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए आप बाबा की विशेष बच्चे हैं, और बाबा हमेशा महिमा करते हैं कि आप लोग जितना ऊंच पुरुषार्थ करके ऊंच प्राप्ति कर लेंगे, वो शायद इतना और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके अंदर बहुत लगन होती है, तीव्र। सुबह की मुरली चलती है, सभी की लगन होती है ना, सुबह मुझे जाना है, 4 बजे से लगन शुरू हो जाती है। हाँ, रोज रोज मुरली कौन कौन सुनते हैं आश्रम पे जाकर? सब सुनते हैं रोज, भाई बड़ी खुशी की बात है ये तो। हाँ, रोज मुरली सुनते हैं, इसमें भी मार्क्स हैं। अंदर से ही लगन होती है कि मुझे सुबह क्लास में जाना है। हमारी सवेरे से ही दिनचर्या की सेटिंग बन जाती है, और वो जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बाबा ने किसके लिए कहा? कभी कई बच्चे होते ना, मेरे लिए पॉइंट नहीं चले, ये पॉइंट इसके लिए चले, ऐसे ही बोलते हैं ना। माना जो ऐसी पॉइंट आती कहेंगे मेरे लिए नहीं है, बाबा ने उसके लिए सुनाई है, उसकी तरफ देखते रहेंगे। ये पॉइंट बाबा ने किसके लिए सुनाई, इसके लिए सुनाई है, मेरे लिए सुनाई, किसके लिए सुनाई है? मेरे लिए सुनाई है ना, किसी दूसरे के लिए नहीं सुनाई है। जब बाबा ने मेरे लिए सुनाई है, जिसे प्यार होता है ना, उसकी कमी अच्छी नहीं लगती है। लगती है? नहीं लगती है। प्यार की निशानी यही है, बाबा को मेरे से प्यार है तो मेरे अंदर की कोई कमी कमजोरी बाबा को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। वो बाबा अंदर से निकालना चाहता है, और मेरे अंदर वो विशेषता, वो क्वालिटीज भरना चाहता है। इसलिए बाबा ने आज जो कुछ कहा, किसके लिए कहा, पहले ये पक्का हो। क्योंकि हम क्लास में देखते हैं, भाई बहनों की निगाह इधर उधर जाने लगती है। देखा, आज बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छा सुनाया, ये ऐसे ही था, ऐसे ही इसको सुनाना चाहिए था। हमको ऐसा नहीं क्लास में करना है, और रोज क्लास में जाना इसका महत्व तो समझो। जैसे संगम पर जब कुंभ आता है ना, तो कुंभ में नहाने का क्या होता है, महत्व तो होता है। विशेष कुंभ के दिन कितनी भीड़ भी होगी ना, तो भी स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं? कुंभ इलाहाबाद में पड़ता है ना, और जगह भी पड़ता है, उसी दिन स्नान करने जाएंगे। तो ये संगम युग का कुंभ मेला खास भगवान स्वयं शिक्षक बन करके हम बच्चों को पढ़ाने आया है, और इतना ऊंच पोस्ट पद दिलाने आया है, इसका महत्व तो है, इसका महत्व तो है या नहीं है? बस हफ्ते में एक दिन चले जाना है क्लास में, या महीने में एक दिन चले जाना है, या रोज आना है, क्या करना है? बाबा सुन रहा है, सुन रहा है बाबा, सुन रहे हो? कुछ भी हो जाए, 1000 काम पड़े रहे, लेकिन मुझे बाबा की मुरली सुनने के लिए जाना है तो जाना है। कुछ भी हो जाए, बीमार भी पड़ाऊं तो बाबा स्वस्थ कर देगा। आप अनुभव करके देखो ना, ये लाइफ ही हमारी अनुभव की है। तब हम ओन अपना अनुभव जब अगले को शेयर करते हैं, अगला भी अनुभव सुनता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। तो हम अपने अनुभव से औरों की जीवन को बदलने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए एक एक बात में अनुभव करो, और फिर वो भाई बहन जब आपस में मिलो तो एक दूसरे का अवगुण नहीं देखो। गाया ना अवगुण चित न धरो प्रभु, हे प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। लेकिन क्या मैं सबके अवगुण चित में धरता जाऊं? बताओ, राइट या रॉन्ग? हम सारा दिन क्या करते हैं? हम एक एक चीज का अनुभव करते जाए, और अनुभव जीवन में बहुत कुछ देता है, स्वयं को भी और सबको भी। तो जो हम यहाँ पर आई हैं, दो दिन, चार दिन, आठ दिन, भरपूर होकर जाएं, खाली नहीं जाएं। ऐसा अपने अंदर एक पावरफुल थॉट, मुझे बाबा के घर में भरपूर होकर जाना है, चूंकि सबको देना है, हम दाता के बच्चे हैं। तो अगर एक एक आत्मा बाबा का बच्चा इतना भरपूर होगा तो विश्व कल्याण की सेवा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? झट हो जाएगी ना। और जो हम सबका टारगेट है कि दुनिया बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ बन जाए, हमारे सारे भाई बहन बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएं, क्योंकि हमारे अंदर तो क्या आ चुकी थी, दानवता मानवता तो छोड़ ही दो, मनुष्य थे, लेकिन क्या मनुष्यता थी? नहीं थी ना। सब कुछ सुनते हैं, प्रेरणा स्रोत, हम कहानियां भी सुनते हैं कि जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और कौरव को बुलाया, दोनों को, और युधिष्ठिर से कहा कि अपने पूरे राज्य में देखो, अगर आपको कोई दुर्जन पुरुष मिले तो लेके आओ मेरे सामने। और दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन से कहा तुम्हें कोई सज्जन पुरुष मिले, एक भी मिले तो मेरे सामने आप लेकर आना। तो युधिष्ठिर खोजते रहे पर उनको कोई भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो श्री कृष्ण के पास लेकर आते, दुर्जन पुरुष। पूछा युधिष्ठिर लाए, युधिष्ठिर ने कहा मैंने सारी जगह ढूंढ डाला पर मुझे एक भी दुर्जन पुरुष दिखाई नहीं दिया। और जब दुर्योधन आए, दुर्योधन से पूछा तुम्हें कोई सज्जन पुरुष लाए मेरे सामने? कहते क्या करे भगवान, कोई मुझे सज्जन पुरुष ही दिखाई नहीं पड़ा। तो हमें हमारी दृष्टि बाबा ने बदल दी है, हम भी युधिष्ठिर की तरह ऐसे अपनी दृष्टि बना ले, आत्मिक दृष्टि, कि हमें एक भी ऐसा दुर्जन दिखाई ही ना पड़े जो हम सदा ही इसी में ही लगे रहे। अपने अंदर वो मानवीय गुण धारण है, पहले तो वो गुण धारण हो, दिखने चाहिए। आज हम ट्रेन में जाते हैं, आज हम रास्ते में जाते हैं, हमारे कई भाई बहन जिनकी रिजर्वेशन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में है, पर क्या वो हमारे अंदर वो क्वालिटी है, वो मानवीय गुण है, वो मॉरल वैल्यूज है? कहीं कुछ तकलीफ में है, क्या हम उनके लिए कुछ इमीडिएट कुछ कर रहे हैं, कर देते हैं? अपने ही अंदर झांक कर देखना होगा और अपनी वो दृष्टि, क्योंकि खत्म कर अपनी वृत्ति से ही हमारी दृष्टि बनती है। तो जब हमारी वृत्ति, हमारी फीलिंग्स वो मानवीय आ जाएगी, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारी कृति बदल जाएगी, कर्म बदल जाएंगे और ये सृष्टि भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ऐसा हम सब भरपूर होकर जाए और तृप्त होकर जाए, जो कमी कमजोरी है दूर होकर करके जाए। ओम शांति।